प्रयास करके विद्वानों के पास में पढ़ लिख करके योग्य होकर के इन देते कैसा कैसे होगा बतलाओ। निरंतर एक आदमी हरि कथा का बड़ी प्रेम के साथ में श्रद्धा के साथ में श्रवण करता है, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। और एक आदमी चाहता है मैं विद्वान होकर के मैं उनका अर्थ लगा सकूं और फिर इसके द्वारा भक्ति को मैं ले लूंगा, भले गुरु जी कभी हैं तो मर जाएंगे कुछ देने के बाद में, तो अभी हमारा वो सहायता करेगा, अभी अभी सुनने की कोई जरूरत नहीं, अभी तो कर रहे हैं जो सुन रहे हैं उसमें हमको वो जरूरत है। हम विद्वान को जाएंगे तो ये नहीं जाएंगे तो भी हम करके अपने भगवान को जाएंगे। अच्छा दोनों में कौन सा विचार ठीक है?
श्रद्धा ने तो अनुसुनी
है, इसलिए ये कार्य, इसलिए यदि सतां प्रसंगम अभिज्ञ संविदौ भवन तेरी तो कर्ण रसायन कथा तजो सनात आशु अपभागवर्तमनि श्रद्धा रति किंतु हम लोग इतना विश्वास में अधिकारी नहीं है इसलिए, नहीं तो इतना यदि हो जाए हरि कथा में रुचि होने लगे अपने आप जरूर होगा निश्चित। क्यों? कथा के माध्यम से भगवान यदि प्रवेश करके उन चीजों को हटा देंगे अज्ञान को और मल को, वो ठीक रहेगा या हम अपने आप झाड़ू दे लेंगे? इसलिए जहां यह सुजोग हो उस सुजोग को नष्ट करना नहीं, जहाँ ये सब सुजोग नहीं है वहाँ पर कुछ कुछ हम लोग प्रयास करें, इसी का नाम साधन है। और जहाँ पर यह स्वयं मिल रहा है ना, हम लोगों को यही एक वरदान हुआ। कुछ बात त्रिविक्रम महाराज जी ने हमको कहा था, जब व्याकरण थोड़ा सा आया है आप बड़े बुद्धिमान हैं जल्दी से पढ़ लेंगे, हमारे दिल में ये बात नहीं है। मैं गुरु जी के साथ उनके कपड़े धोते हुए उनके जहाँ जब वक्तृता करने जा रहे हैं वहीं पर के बड़ी अटेंशन से सुन करके उसमें से पॉइंट लेकर के उनसे तर्क वितर्क करके उनसे सुन करके दिन रात उनके साथ में कुछ दिन रहा। इसलिए हम लोगों को ने माया को माया ने हमारी रक्षा की और उनके बातों से बिना व्याकरण और कुछ भी पढ़े, बड़े बड़े व्याकरणाचार्य भी सुनना चाहते हैं कुछ, ये गुरु जी की अपार महिमा है देखो। और सेवा में और हरि कथा के श्रवण में कितनी चीज है। आज मैं व्याकरण पढ़ करके जो चेष्टा करता है तो ये सब चीजें मिलती, हमको क्या जरूरत है व्याकरण की? ये आ गया कि नहीं अपने आप? सनातन गोस्वामी जी व्याकरण को और जी गोस्वामी रूप गोस्वामी सब तोड़ करके सब। इसलिए यदि है तो ठीक है, किंतु इस पर विश्वास रखो, उस पर विश्वास मत रखो, वो भक्ति को दूर भी कर सकता है किंतु ये भक्ति नहीं दूर करेगा। इसलिए अधिक बल इसी पर देना चाहिए। इसलिए कहते हैं आकल्प, जब तक कल्प रहेगा, मैं तब तक आपको प्रणाम किया, किया मैंने क्या करता रहूंगा, आप ऐसा कृपा कीजिए। कहां प्रणाम करोगे? कल्याणुजानी में मैं जाऊं तो ब्रह्मलोक से प्रणाम करेंगे ना, कुएं से प्रणाम करता रहूंगा। ठीक है, तो देखो इसके बाद में क्या, अथवा भगवत कृपा संजात जो उन्होंने स्तुति की, जैसे हम लोग स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपति, महाप्रभु जी के लिए करते हैं आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाविच विद्रव्य सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय अच्छा इसका कुछ फल होगा कि नहीं जो हम कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं कि इसका कुछ फल है कि नहीं? हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, मान लिया कि जैसे रूप गोस्वामी ने दिश दिश रक्षण तिम संचरण नेत्र लक्ष्मी इत्यादि कर रहे हैं, हे कृष्ण अथवा श्याम सुंदर श्रीखंड शेखर श्री रहा स्मरणी मनोहर राधिका रसिक मांग कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरी गुरु, ये जो प्रार्थना करते हैं इसका फल है कि नहीं? क्या फल है? यदि हृदय से कोई हृदय से निकलता है, यदि हृदय से नहीं निकलता है तो भी प्रार्थना करता है तो इसका फल है कि नहीं है? जाने सुने यदि सरसों का तेल या घी यदि फर्श पर गिर जाता है तो जितना भी उठाओ घी लगेगा कि नहीं? उसमें कितना तो हो जाएगा ना, पैसे चलेगा तो, और कुछ नहीं होगा तो फिसलने लायक हृदय तो हमारा हो जाएगा, जरा द्रवित तो हो जाएगा। और उसके बाद में फिर उद्रवता के साथ में यदि उसको श्लोकों को पाठ किया जाए तो क्या होगा? वो बिना भक्ति आने के लिए बात है।
भक्ति में ठाकुर जी अपने कारखाना पंजी में कहा बिना जाने सुने बिना अपने तब करेंगे उनका बहुत फल।
अभी गायत्री मंत्र इत्यादि हम लोग जो मंत्र है गुरु जी ने कह दिया ये करो हम लोग कर, इसका फल ही तो ये है। उन्होंने गुरु जी ने हमको ये कभी कुछ ये सब चीज नहीं बताया, उसके पहले अब रहते तो हम लोग कुछ, किंतु देखो करते 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 यहाँ तक आए। अब मैं सोचता हूँ उनकी कृपा कितनी लंबी और कितनी उदार, इसमें ढीला ढाला मत करो। इसलिए नाम संकीर्तन इत्यादि, नाम संकीर्तन एक महास्त्रोत्र है, संबोधनात्मक स्त्रोत्र है, इसलिए सबको करो, इसका फल जरूर अवश्य होगा। तो वो कह रहे हैं कि मैंने जो ये प्रणाम आपको किया है स्तुति की, उसके फल से क्या हुआ? भक्ति हमारे जरूर आई, तो उन आई और उसी से भक्ति भाष्य नाम संकीर्तन मूलक कीर्तन रूप परम स्तुति करने करते 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 सर्व अवतार प्रयोजन तत्व, प्रयोजन तत्व। अब यह नाम संकीर्तन यहां पर जो हे कृष्ण पुष्कर दायन इत्यादि जो करें, हे कृष्ण ये हुआ मूल नाम कीर्तन, और उनका विशेषण किया दिया है विष्णुकुल पुष्कर जोशदा क्षमा निर्जर देव द्विजर उनको प्रवर्धन करने वाले वृद्धिकार ये सब किया, किंतु कीर्तन कर रहे हैं किसका? हम नाम संकीर्तन को पूरा करते हुए जो कुछ करो स्तव स्तुति सब कर लिया ना, अंत में एक कीर्तन कर दो हरे कृष्ण का, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर। बस यदि कुछ छिद्र भी होगा स्तुति सौ और सब काम में तो वो पूरा हो गया। प्रथमा कह रहे हैं स्तुति करते हुए कृष्ण की, जैसे कृष्ण के लिए करें हरे कृष्ण, इसमें पहले को विशेषण मानो दूसरे को विशेष मानो, हमारे पापों को हरण करने वाले हमारे चित्त को हरण करने वाले अपनी माधुरी से आकृष्ट करके अपने तरफ में कृष्ण आकर्षित करने वाले जो कृष्ण हैं उनके लिए कृष्ण। इसी तरह सब में वो समझ लो इस रूप में कीर्तन करो। जो प्रकाश है सूर्य के उदय से अपने आप बिना परिश्रम के तम रोशनी दूर हो जाती है, अंधकार दूर हो जाता है और कमल के फूल खिल जाते हैं अपने आप, कुछ करना है किंतु अपने आप नहीं होता है। सूर्य की किरणों में कुछ ऐसा होता है या चंद्र के किरणों में कुछ ऐसी चीज होती है, उन किरणों से तम दूर हो जाता है और कमल के फूल। क्या चीज है? पहले में तो तपन तप्तता है गर्मी है, और दूसरे में क्या है? शीतलता है। कृष्ण के लिए आंशिक रूप में वो ताप को देने वाली कोई चीज हो जाए, ताप के द्वारा भी वो पकती है ना, ताप ना रहे तो पके जाना है, तो उस रूप में ताप देकर के पकाएंगे। और दूसरी तरफ में अपने प्रेम रूपी किरणों को प्रेम रूपी अमृत को किरणें से देते हैं, देने से क्या होता है वो जो कृतिका जो वस्तु है अपने आप खिल जाती है, उससे कमल इत्यादि खिल जाते हैं। इसी रूप से कृष्ण के आविर्भाव मात्र से वसुदेव देव की यादव वर्ग जितने आनंद से उनका दुख दूर हो गया, कंस का अत्याचार का जो था अब ये दूर होगा। और देवता लोग भी, गायें भी, गायें कट रही थी, देवता लोग बड़े दुख अनुभव कर रहे थे, उनको यज्ञ में भाग नहीं मिलता था, ब्राह्मण लोग यज्ञ नहीं कर सकते थे, इसलिए गो बीज और देवता इत्यादि सभी आनंदित हुए, वसुदेव देवकी भी। दशम स्कंद में ऐसा दिया गया है, सब विभ्रत पौरुषम धाम राजमानो यथा रवि दुरासदो दुर्विषहो भूतानं संबभूवः। जिस समय कृष्ण का तेज उनके शरीर में पहुंचा वसुदेव जी के हृदय में, दूसरों के लिए उनका तेज ऐसा हो गया जो सह न सके, दुर्विषह, आंखें नहीं उधर लोगों की पड़। और वही तेज जब वसुदेव की में गया तो वो कैसी हो गई, कोटि कोटि सूर्य के समान प्रभावशाली, उनके तरफ में लोग देख नहीं सकते, क्यों अकस्मात ऐसा हो गया कोई धारणा नहीं कर सकते। तो उसके लिए कह रहे हैं सूर्य जैसे तम को निवास दूर करते हैं, देवता लोग इसी समय में देख करके बोले अब हम जान गए कि आप देवकी के गर्भ में पधारे, अब जान गए कि हम लोग अब निश्चिंत हो गए, आप सत्य संकल्प है, त्रि सत्य है, सत्य की जोनी है, आप इसमें आ गए, अब समझ गए कि आज हमारा दुख दूर हो गया, अभी दूर नहीं हुआ है, अभी बाकी है। कृष्ण के आविर्भाव से देवताओं ने भाप लिया कि महाभारत युद्ध नहीं होगा, और जितने आतताई लोग हैं देहापरिमान्य सबका ध्वंस एक तरह से हो गया, ये समझ कंस इत्यादि जितने हैं ये सब लोग मारे जाएंगे, इनका अत्याचार अब कुछ दिनों के लिए ऐसे ही ठीक समझो। साधुओं का संग यदि हो गया प्रकृष्ट रूप से, समझो जो हमारे कोटि कोटि जन्मों की दुष्कृतियां, और मैं भौर सागर को तर ही गया, तर गया सब, ऐसा सौभाग्य हुए बिना नहीं होता, इसलिए बड़े बड़े पूर्व जन्मों के सौभाग्य से महात्मा जी का दर्शन या संस्कृति का यह समझ। यदि अभी रुचि नहीं है, रुचि भी ला देंगे, वो वृद्धि भावों को हटा देंगे और कृष्ण के तरफ भी रुचि आ जरूर होगा, ऐसा समझ, इसलिए उसका उद्धार हो गया। ये हरिदास ठाकुर जी ने नित्यानंद प्रभु जी को कहा, प्रभु जगाई मदाई का उद्धार हो गया, अभी अभी मारे नहीं है, अभी रक्त नहीं आया, तभी करें क्या, तो जगाई मदाई का उद्धार हो गया, आपकी दृष्टि पड़ गई, आपकी इच्छा हो गई, और उसका उद्धार बाकी रहा, अब तो केवल अनुष्ठान बाकी है,
फॉर्मेलिटी पूरा करना है,
फॉर्मेलिटी पूरा करना है। वो फॉर्मेलिटी कैसे पूरा करते हैं ये अब देखना है, जो कैसे फॉर्मेलिटी पूरी हुई, फॉर्मेलिटी पूरी हुई, उसने इसमें मारा, महापुरुष जी आ गए और अपना प्रेम दे ऐसे इस प्रकार आनक दंदुरी वसुदेव जी, आनक दंदुरी माने क्या, दंदुरी बजती है
देवता के वाद्य यंत्र,
उनके जन्म के समय में देवताओं ने दंदुरी बजाई, क्यों, आप ही के कुल में पर ब्रह्म साक्षात कृष्ण जी अवतरित हैं, आनंद उत्सव की कथा देश स्तुति में भी ऐसी कही गई, हे हरे कितना बज गया बाकी बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर, आप लोग इसको कल सुन, एक घंटा से अधिक
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यः विष्णु नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मेतया सर्वोऽभिनेतु तं सर्वभूतहृदयम् तवैवास्मि तवैवास्मि मज्जमान त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमां च हत्याभिमातरादलक्षे क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं वन्दे नमस्ते च उनकी प्रार्थना के अंत में स्तुति के अंत में ब्रह्मा जी कृष्ण का नाम कीर्तन करते हुए उसका उपसंहार कर रहे हैं। प्रारंभ में नाम संकीर्तन और अंत में नाम संकीर्तन सिद्धि के लिए वो करेंगे। कृष्ण कैसे दयालु, कृष्ण नाम कीर्तन करते हुए उनका दयालुता का परिचय दिया कि कृष्ण विष्णुकुल कमल के लिए उत्सव स्वरूप है। क्षमा माने पृथ्वी, निर्जर माने देवता, द्विजर ब्राह्मण और पशुओं के समुद्र के लिए वो वृद्धि कार्य सबसे वृद्धि करते हैं और धर्म सार बहर क्षितिराज राक्षस ध्रुव आप कल्प और कमरहन भगवान नमस्ते धर्म रूपी रात धर्म के विपरीत और धर्म धर्म का उल्टा अधर्म रूपी रात्रि को दूर करने के लिए वो चंद्र के समान है उसी तरह और क्षिति राक्षस ध्रुव क्षिति के पृथ्वी के राक्षस इन सबको विनाश करने वाले मैं जब तक कल्प है तब तक के लिए अर्क स्वरूप जो भगवान हैं उनका मैं उन पूज्य कृष्ण को मैं नमस्कार करता रहूँगा। साधारण व्यर्थ बतला करके क्षमा निर्जर द्विज पशु इत्यादि का तो एक तरह से बतलाया निचली अर्थ का निचली लाइन का बतलाया। गर्भस्तुति की गर्भस्तुति करते हुए माता देवकी के लिए करें कि माता सौभाग्य से परम पुरुष भगवान उन लोगों के मंगल करने के लिए आपके गर्भ में प्रविष्ट हो गए। आपका यह पुत्र जदुओं की रक्षा करने वाला होगा। अब कंस से भय न करें, आप समझ लीजिए कंस मारा गया अभी गर्भ में है तभी कह रहे हैं देवताओं के लिए कितना समय है। अभी गर्भ में आए उसके 8 महीने के बाद में उनका जन्म हुआ तो अभी कह रहे हैं जो मारा गया कंस तो समझ लो कि मारा गया कैसे। साइकिल चलाओ जोर से पैडल घुमा दो और फिर पैडल को बंद कर दो अब वो गाड़ी खड़ी होगी किंतु कितने दूर चली जाएगी
जब तक उनकी स्पीड है,
जब तक स्पीड है तब तक आगे बढ़ जाएगी। तो समझो जैसे वो चलना भी बंद हो गया है, उसी तरह से ये जब गर्भ में आए हैं तो वो मारा जा चुका है, ऐसा समझो। अब आप भय न करें, बल्कि कृष्ण जब तक कि गर्भ में थे तब तक कंस ने उतना कष्ट नहीं दिया, जब जन्मे हैं तभी कष्ट दिया अधिक, तो कष्ट अधिक हुआ ये कहते हैं कि मारा गया, भय मत करें, इसलिए कि आपका कुछ भी नहीं कर सकेगा। जब दिया प्रदीप जब बुझने को होता है तो धप 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 करता है, ऐसे ये कंस धप धप कर रहा है, मृत्यु निकट हो गई, अब बुझने वाला है, ऐसा समझिए। फिर कहते हैं कि जब कृष्ण का जन्म हो रहा है उस समय में प्रकृति सब शांत हो गई, वातावरण मंगलदायक हो गया, ये बदला है, दिशाएं मंगलमय हो गई, मेघ मृदु मृदु गर्जन करने लगे, एक एक दो दो बूंद वर्षा होने माने आनंद के आंसू उनके गिरने लगे, षड ऋतुओं के फूल सब खिल गए, नदियां स्वच्छ निर्मल हो गई, सब मंगलमय, ग्रह नक्षत्र सब हो गए, अवनी चल वन पू ग्राम ब्रज सब प्रकार से मंगल प्रवर्तित हो गया, इसलिए कृष्ण मंगल स्वरूप है। पृथ्वी देवता ब्राह्मण और पशु सकल विशेषतर नंद ब्रज के गाय इत्यादि का भी वर्धित होना भी समझ लो, ये भी ये सभी का कल्याण, सबका आनंद वर्धन किया कृष्ण। पतला रहे सब में अपनी प्रेम भक्ति का वर्धन करने के लिए, वो वर्धन है ना इस लोक वृद्धि कार्य, सब में अपनी प्रेमा भक्ति का प्रकाश करने के लिए कृष्ण का आविर्भाव हो रहा है, इसलिए अपने में जो कुछ किया इससे प्रेम भक्ति का वर्धन हुआ, लताओं को भी प्रेम दिया, मनुष्यों की तो बात है, जगत में वो दुर्भागा हैं जो भगवान की लीला कथा सुन करके भी जिनका काम क्रोध मोह लोभ मद मोह मात्सर्य मान अपमान नहीं जाता, वो संसार में सबसे दुर्भागा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हरी कथा रुचि नहीं है, वो सब परिश्रम बेकार है, यदि भगवान की कथाओं में रुचि है, भगवान ऐसे लोगों के लिए धाम में कथा में सब कांटे रखते हैं, ये कांटे उनको लग जाएं और लोग इससे दूर रहें। शंकर को आदेश क्यों दिया है, जैसे जाओ भक्ति का उल्टा प्रकाश करो, किस लिए, ये कांटा वो कांटे में उलझ जाए, अशुभ लोग हैं वो कांटे में उलझ जाए और भक्त लोग को अच्छी तरह से अपनी भक्ति का पालन कर सकें, इसलिए कांटे में मत उलझो, कांटा से ऊपर उठो, भगवत भक्ति का आश्रय करो। हरि कथा में यदि रुचि नहीं है तो उसका सब परिश्रम बेकार, यहाँ पर उद्धर्म जाए उद्धर्म सर्व उद्धर उद्धर्म उत धर्म उत माने उच्च उच्च धर्म का प्रकाश करने के लिए जगत में देने के लिए, तो कंस को जरासंध को शिशुपाल दंत पत्र को उन्होंने दे दिया कि नहीं प्रेम धर्म, ऊंचा धर्म नहीं दे सके, वो लोग कहेंगे से कृष्ण का दोष देखा ना, कृष्ण को भगवान के रूप में या उनका गुण नहीं देखा, दोष देखा तो दोष देखते रहो, मार करके उनकी उनकी गति दी। इसलिए उद्धर्म माने होता है उच्चा धर्म। सबसे उच्चा धर्म क्या है? गोपियों का कृष्ण के प्रति भाव। और उनमें भी उच्चा धर्म क्या है? गोपियों का भाव। और गोपियों में भी सबसे उच्चा भाव कहां पर प्रकाशित हुआ? राक्षसस्थली में। इसलिए जहां निशाकालीन अंधकार सदृश भय निवर्तक और अवश्य प्रतिपाल्य स्वधर्म लक्षण विशिष्ट गोपियों के सहित में कृष्ण की रास आदि क्रिया को उद्धर्म। अच्छा, एक उल्टा हुआ क्या? अधर्म। सबसे जो निम्न कोटि का अधर्म है, सबसे निम्न, वो उद्धर्म हुआ। और ठीक उसी के द्वारा अब ले गए सबसे उच्च कोटि का जो धर्म है गोपियों के साथ में कृष्ण की जो रास क्रिया है, ये आपने उसे प्रकट किया। किसको? रास को। भगवान अपी तारात्रि फुल्ल सदमल लिखा यहाँ पर गोपियों के सहित आप प्रकट होकर के सबसे पहले आपने गोपियों के सहित में रास क्रीड़ा इत्यादि मैं उन भय को दूर किया। क्या भय दूर किया? जिन लोगों को उनके पतियों ने रोक रखा था, उनसे मिले, उनके हृदय में मिले और उन्हें सदा के लिए ग्रहण करके राष्ट्रमंडली में रख दिया, उनका भय सदा के लिए दूर किया। क्या भय था? पति पुत्र सास ससुर इत्यादि का, समाज का, गुरुजन का जो भय था, ये तो सूक्ष्म रूप में। और स्थूल रूप में क्या किया? शंखचू इत्यादि जो इसके प्रबल बाधा देने वाले थे, उसमें शंखचूड़ को मार करके गोपियों का भय दूर किया और फिर राक्षसस्थल में ले गए। यद्यपि अभी किस चीज की बात कर रहे हैं? यह कब की बात है? जब ब्रह्मा जी स्तव कर रहे हैं, अभी रासलीला आरंभ ही नहीं, रासलीला से प्रारंभ। तो रासलीला के समय की बात पीछे वाली पहले कैसे जान ले? ब्रह्मा जी तो साधारण है, सर्वज्ञ हैं। नवलीलावत भगवान की लीला में सर्वज्ञता नहीं रहती, किंतु ब्रह्मा जी उससे भी निम्न में है, नीचे, इसलिए सर्वज्ञता गुण का है। गोप बालक लोग इनसे बहुत ऊंचे हैं किंतु उनमें सर्वज्ञता नहीं है। यशोदा जी में नहीं है, व्यवहार नहीं कर रही। सर्वज्ञ का भी सर्वज्ञ ये
जोग माया के द्वारा भूले
किंतु जोग माया के द्वारा उनका भी अज्ञान। ब्रह्मा जी आधिकारिक दास होने के नाते नारद जी और सब जो है वो सर्वज्ञ है, क्योंकि नर्मद लीला में इनका प्रवेश नहीं है। यदि प्रवेश होता तो ये लोग ही, जब कृष्ण भूल जाते हैं तो इन लोगों की तोड़ना, किंतु ब्रह्मा जी उस समय सर्वज्ञ बने हुए हैं। कृष्ण उस समय सर्वज्ञ नहीं है, नरलीला में होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं कर रहे, तो इसलिए ब्रह्मा जी भविष्य की लीला को देख रहे हैं। कितनी दूर भविष्य है उनके लिए? एक दो मिनट का। ब्रह्मा की आयु और समय के अनुसार में वो जो 5-6 वर्ष का जो समय है, 7 वर्ष के समय में ये हो रहा है, गोवर्धन को धारण इत्यादि किया था, ये शायद उसी समय का आसपास का है, और इसके 2-1 वर्ष के बाद ही रासलीला हुई। तो 2 वर्ष उनके लिए कितना समय है? उनके ब्रह्मलोक जाने में और आने में जो 1 मिनट का समय लगा, उन्हीं में तो 1 वर्ष पूरा हो गया, इसलिए उनका 1 सेकंड का समय कितना होगा? इसलिए उससे समय को समझते हैं। थोड़ी देर के बाद में अंधकार हो जाएगा, एक घंटे के बाद ही अंधकार हो जाएगा। ये सर्वज्ञता जानने की हम लोगों में शक्ति है कि नहीं है? देखे हम नहीं देखे तो भी बतला देंगे। तारे आकाश में दिखेंगे। आज चंद्र का कितना कला, 13वां कला तक दिखाई पड़ेगा थोड़ी देर में। चंद्र अभी पूर्व दिशा से अभी नहीं, हम नहीं देख रहे हैं तो अभी बतला रहे हैं। और रात में अभी की अपेक्षा अधिक ठंड लगेगी, विशेष करके 4 बजे के करीब में अधिक ठंड लगेगी। मैं भविष्य वक्ता बतला रहा हूँ। हमारे ऋषि लोग ऐसे ही देख करके समय लाख वर्षों का भविष्यवाणी कर देते हैं, कलयुग में क्या क्या होगा, कैसे होगा, ये सब बतला देते हैं। जैसे वैद्य कोई एक लक्षण देखा और सब रोग का निरूपण कर देता है। जैसे मान ले कि कोई रोगी आए, देखा जैसे उसका शरीर दुबला पतला है, देखो झूठ मूठ के लिए हाथ पकड़ा किंतु वो ऐसे ही कह रहा है तुम्हारी हजम शक्ति खराब है कि नहीं, उसे पूछेंगे अरे तुमको कोई हजम होती है नहीं, टट्टी साफ नहीं आती ना, ये सब मैं बतला रहे हैं। अच्छा आलस्य आता है ना, आलस्य तो बहुत आता है, नींद ठीक से नहीं आती ना, आता नहीं तो यही करो भाई, उस पर विश्वास करा दिया। क्यों? वो सिम्टम सब अपने आप सब कर ऐसे ब्रह्मा जी बतला रहे हैं। ओ ये लीला होगी, शंकर चुड़ाएगा रास मंडली में गड़बड़ करेगा, गोपियों को पकड़ करके ले जाएगा, कृष्ण और बलदेव पीछा करेंगे, कृष्ण उसको मारकर और उसका शंख चूड़ का वो मणि निकाल लेंगे और फिर ये बलदेव जी को दे देंगे, बलदेव जी से वह मणि राधा जी के पास में पहुंच जाए, रास पर्वत फिर आरंभ। ये लीला कैसी है? सर्वोत्तम सर्वोच्च धर्म, इसका प्रवर्तन आपने किया है। आपने किया माने पूर्व लीला में भी किया, अब इसके बाद में आप करेंगे। एक पहली बार ये राष्ट्रपीड़ा नहीं है, इसके पहले न जाने कितनी बार राष्ट्रपीड़ा की। धर्म किसको कहते हैं? भगवान के प्रति भक्ति उत्पादन करना ही धर्म है। किसी को भगवान के प्रति भक्ति लगा देना ये सबसे ऊंचा धर्म है, किसी को भी। और सबसे ऊंचा वो बतलाए ना, यदि किसी को राष्ट्र में उपस्थित कर दे तो अपने उपदेशों से, अपने संग से, विचारों से स्वरूप सिद्धि करके, वस्तु सिद्धि करा करके वहां पर पहुंचा दे, वो सबसे बड़ा धर्म है। तो किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को सद्धर्म में अर्थात भक्ति में लगा देना। बद्ध जी सब समय इसका विरोध करता है, वो वजन करता है, विचार करता है, भक्ति से भक्ति करने से यदि हमारा कोई अपमान हो जाए तो हम भक्ति को भी छोड़ दें, भक्ति से बड़ा उसका मान अपमान रहता है। अभी भक्ति में अभी प्रवेश ठीक से नहीं किए हुए हैं, ऊपर से पालन कर रहे हैं, गुरु भी किया है, हरिनाम भी कर रहे हैं, गुरु वैष्णव के आंतरिक भाव को तो समझते नहीं, वो अपने अधिकार से विचार करेंगे। ब्रह्मा कृष्ण के संबंध में जो कुछ कर रहे हैं ये कृष्ण के अनुरूप कर रहे हैं न अपने अधिकार के अनुरूप में बोल रहे हैं,
अपने अधिकार के अनुसार
में उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण का अनुरूप नहीं। कृष्ण की तो अनंत माधुरी लहरी है, अनंत है, ब्रह्मा जी एक में भी डूबे नहीं है, थोड़ा सा सुने हैं, बहुत दूर से देखा है। इसलिए वो कहते हैं कि भगवान के प्रति किसी जीव का छल बल कल से भक्ति उत्पन्न करना ही सबसे बड़ी दया है, या यही सबसे बड़ा धर्म है। भूरिदा भगवान की कथाओं के माध्यम से, किंतु साधारण जीव ऐसा होता है कि इस दया को समझता नहीं है। यदि समझता ना तो जन्म जन्म का अहंकार नहीं बन जाता, उपलब्धि नहीं करता इस दया को। इस दया को उपलब्धि कर जाए तो जन्म जन्म का क्या उसके चरणों में विकृत पशु की भांति हो जाए। किंतु जीवों का यही दुर्भाग्य, इस चीज को समझता नहीं है। वो समझता कि उन्होंने 100 रुपये दिए हमको, जब जाते हैं तो बड़ी लल्लू चक्कू बड़े प्रेम की बातें करते हैं और हमारा बहुत आदर करते हैं, आइए 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 पधारिए विराजमान होइए सुशोभित होइए। इनके यहाँ जाते हैं तो उल्टी सीधी खड़ी बातें करते हैं, प्रेम से कभी ने नहीं कहा जाइए बैठिए, कहता जी भजन करो भजन करो, जब ही जाते हैं तो भजन करो भजन, ना जाने क्या भजन, और कोई दूसरी बात नहीं है जो भजन करने की आता, कोई बात ही नहीं। अरे कुछ खाओ पियो, ऐसा तो प्रेम से हो। उसके घर में गए, कितना आदर किया, बड़े प्रेम से बोला तुम्हारी लड़की की शादी हो गई, भाई पर ढूंढ रहे हो, तुम्हारा लड़का ठीक से चल रहा है, आपकी तबीयत ठीक तो है, एक डॉक्टर से दिखला दूँ आपको, चलिए 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 आपको मैं किराया देकर से। इन बातों में उनको रहता है, कोई हमारा ऐसा आदर कर रहा है समझता है। कृष्ण ने शिशुपाल को मारा, उसका उपकार किया, शिशुपाल समझा नहीं समझा, वो अपना मित्र किसको मान रहा है, दुर्योधन को। दुर्योधन क्या करता है, यही सब करता है, वो उसका मित्र बन गया। अर्जुन ने कृष्ण के भावों को समझा, कृष्ण उनके मित्र बन गए। अर्जुन उनके मित्र बनेंगे पीछे, पहले कृष्ण ही बन गए उनके मित्र। इसलिए जीव को यह समझ नहीं होती है कौन हमारा उपकारी है कौन अनुपकारी है। इसलिए हमारे जीवन में जिन्होंने हमारी मन की वृत्ति को मोड़ दिया भगवान के तरफ में, उनसे बढ़कर के हमारा और कोई भी उपकारी नहीं है। उनका हम जीवन भर जन्म जन्मांतर तक कोटि कोटि कल्पों तक हम उनके ऋणी रहेंगे, उनके ऋण से ये चीज हम नहीं समझते। हमारे आचार्य लोग समझते हैं, उनको कुछ अनुभव है इस विषय का, आप लोग भी इसको समझने की चेष्टा करें। जिसने जीवन में हमको हमारा जीवन थोड़ा सा मोड़ दिया भगवान के तरफ, वैसा उपकारी विश्व में नहीं है, है? वो यदि लल्लू चप्पू की बातें नहीं करता है तो ये अपना कल्याण समझो, शासन करता है किस लिए, कृष्ण जैसा। कृष्ण किसको शासन करते हैं, यदि शरणागत हो गया तो जो शरणागत नहीं है उसको शासन नहीं करेंगे। इसलिए ऐसा समझना चाहिए खूब अच्छी तरह से, वैसा हमारा कोई भी उपकारी संसार में नहीं, वो हमारा जन्म जन्म कार्य। तो ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी, यदि किसी ने भक्ति के तरफ में हमारे चित्त वृत्ति को मोड़ दिया, वही सबसे बड़ा धर्म है, ऊंचा धर्म है। और फिर उस भक्ति को मोड़ करके उसको साधन भक्ति बनाया, फिर साधन भक्ति से भाव भक्ति बनाया, और यदि भाव भक्ति से, ये सबसे बड़ा है हमारा क्रमशः। सभी हमारे गुरु हैं किंतु क्रमशः एक एक से दुर्लभ चीजें हैं, जो कोई अनुभव करेगा तब तो ये समझेगा, नहीं तो समझेगा नहीं। वो दो पैसे रुपल्ली फूटी कौड़ी जैसे बिरबल वाला है ना, जो कल सुनाया, बस उसी में रहेगा। इसलिए इसको उद्धर्म कहा गया। एकादश स्कंद में भगवान ने ऐसा ही बतलाया है, क्या बतलाया है, बतला है भगवत वचना भगवान के कहने के अनुसार में, धर्म बोलते भक्ति लक्षण, भक्ति को ही धर्म कहा गया है। धर्मो मद भक्ति कृत पुरुषः, मद भक्ति, भक्ति मद कृत उक्त प्रोक्त, हमने ऐसा कहा है क्या? भक्ति ही धर्म है, परम धर्म है। मतलब सब आई पुरुषान परो धर्मो जतो भक्ति, ये परम धर्म। इस भक्ति को जिसने दान किया, हमारे हृदय में प्रकटित करने के लिए चेष्टा की, हमारा उपकार किया, सहायता की, इससे बढ़कर के और कोई परम बंधु होगा? और कोई बंधु? कृष्ण यही काम करते हैं, कभी अपने देते हैं, कभी अपने परिकरों के द्वारा इस भक्ति को हमारे हृदय में प्रविष्ट कराते, इस दया को दिखला करके नहीं करते। संसार में हम किसी को देना चाहते हैं ना, एक समय हमको एक आदमी ले गया है बड़ी सभा में उद्बोधन करने के लिए, लोगों को कंबल बांटना था तो वो चार फोटोग्राफर रखे थे, हमको एक दिया, जैसे आप आरंभ कर दी हमने दे दिया, फोटो नहीं खींचा हमारा फोटो नहीं खींचा। और जब वो हमारा लेने के बाद में जब वो फोटो खींचता, चार तरफ से जो फोटोग्राफर लगे हैं वो दे रहा है दूसरों को, तो देख रहा है ऐसे फोटो की तरफ में, और जो हमारा फोटो खींच रहा है कि नहीं, और वो दे रहा है। मैंने उसी समय में कहा था इस दान का कोई महत्व नहीं, दूसरों से कंबलिया लेकर तीसरे को दे रहे हैं, उस भी लिया होगा 100, उसमें से चार पांच कंबलिया दे करके बाकी कंबलिया आपने ले लिया है, और उसको एक दिया, वो भी फोटो खिंचवा रहे हैं, तो ये धर्म हुआ कि नहीं? जगत का ऐसा है, प्रभु ने हमें दिया कुछ, ये किसका है? तो प्रभु का सर्वस्व रख करके 1/100 भाग में एक कंबलिया है, हम लोग बाकी सब रख करके और किसी को देते हैं कुछ, वो भी फोटो खिंचवा करके लोगों को दिखला करके देते हैं। अब प्रभु क्या करता है, इतना बड़ा भारी उपकार करता है, किसी को नहीं दिखला देता, इतनी बड़ी भारी चीज देता है भक्ति की तरफ में, अपने नहीं देता, क्यों लोग जानेंगे जो खुद देते हैं, इसलिए अपने भक्तों के माध्यम से, वो भी उत्तम कोटि के भक्तों के नहीं, मध्यम अधिकारी भक्तों के द्वारा इस चीज को देता है। यह सब जो कुछ है यह सब गौरव उनको दिलाता है, अपने नहीं लेता, उत्तम अधिकारी भी नहीं करते, वो दूसरों को प्रशिक्षित ऐसा कर देते हैं, अपने मध्यम अधिकारी भक्तों को संसार का उद्धार करते हैं। ऐसे वो कहां स्पृहा शून्य, ये लोग परम उपकारी, ये परम धर्म को पालन करने वाले कौन? भक्ति के तरफ में, भक्ति ही परम धर्म है, उसमें प्रवर्तित करते हैं वो। उसके लिए क्या करते हैं? सर्वहर, सर्व माने अंधकार, उद्धर माने उच्चा धर्म को देने के लिए, उसमें जो अंधकार है, अंधकार क्या है? ज्ञान कर्म इत्यादि ना? ये सब अंधकार स्वरूप है। जैसे कंस शिशुपाल वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले हैं, कंस के जीवन में कभी भी दुराचार नहीं देखेंगे, दुराचार माने स्त्री जाति, जाति किसी स्त्री को दूसरे की स्त्री को पकड़ करके अपने घर में नहीं लाए, ऐसा पाप वो नहीं किया, अत्याचार जो दुराचार इत्यादि, और दान भी देता था ब्राह्मणों को यज्ञ करने के लिए, कौन लगाया?
कंस
लगाया था ना,
तो ये बड़ा सुंदर
वेदभीत धर्म, ये सब करता है, अपने भाइयों को कष्ट देता था, जो कंस को मानते थे उन पर कोई अत्याचार नहीं, उसका विरोध था केवल कृष्ण और कृष्ण के अनुरूप जो भक्त हैं उन्हीं के ऊपर में।
अपने पिताजी को जेल में छोड़ दिया
क्योंकि कृष्ण पक्ष विष्णु पक्ष थे, अक्रूर को नहीं बंद किया और किसी को बंद नहीं किया, कहता जो कृष्ण को भगवान तो कौन देखा, उनसे विरोध था। भक्ति का जो कर्म और ज्ञान जो ढकने वाले हैं, इन्हीं यही अंधकार है, इनको दूर किया। ये इतने वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले कौन? कर्ण जैसा दानी धर्मात्मा सब था, किंतु भक्ति भगवान की नहीं किया, कृष्ण का भी विरोध उससे नहीं था, उसका विरोध किससे था? किंतु कृष्ण का प्राण भक्त है, भक्तों का प्राण कृष्ण है, इसलिए कृष्ण ने अपने प्रति किया हुआ अपराध समझा। इसलिए कहते हैं कि उसको हरण करने वाले कंस इत्यादि का विनाश किया, बड़ा संधर्म इत्यादि कर्मी था, सत्कर्मी ये लोग कहे जा सकते हैं, किंतु सत्कर्म भी भक्ति को ठक देता है। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि अरे सत्कर्म, सत्कर्म ही सबसे बड़ा है, कर्म करो कर्म करो, नहीं कर्म और ज्ञान सब समय भक्ति के यदि आवरक हैं तो वह अंधकार के समान है, इसलिए इनका अंधकार शरीर स्वरूप है, इसको ये दूर कर देते हैं। कौन? कृष्ण। इसका दूर किया, महाभारत युद्ध का यही कारण था। ऐसे पाखंडी और देह में आत्मबुद्धि करने वाले असुरों को उन्होंने विनाश करके सद्धर्म की प्रतिष्ठा की। इसलिए लोगों के लिए जो जीवन सर्वस्व भक्ति है, आदमी ये नहीं देखता है कि भक्ति हमारी वृद्धि हो रही है कि नहीं, ये नहीं देखता, उसको मन समान मिल रहा है कि नहीं, ये साधारण आदमी देखता है। कहीं भक्ति मिल रही है और मान सम्मान नहीं कुछ है तो कहता है ये इसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। अधिकांश ऐसे ही लोग, और जो गुणी व्यक्ति हैं मान सम्मान की तरफ नहीं देकर के भक्ति।